ओम शांति। बाप दादा के अथक सेवाधारी, ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा, मुरली के मस्ताने, मुरली का बहुत ही मनन चिंतन मंथन करके मक्खन निकालने वाले राजयोगी राजू भाई आज हमारे पास विशेष क्लास कराने के लिए पहुंचे हैं। हम सब एक ताली से आपका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। राजू भाई को सभी मुरली वाले राजू भाई के नाम से पहचानते हैं। इन्हों के पास शुरू से लेकर अभी तक की मुरलियों का काफी खजाना, बाबा के हाथों से लिखे हुए पत्र या कई प्रकार की दीदी दादियों की डायरियां, बहुत कुछ खजाने आपके पास है। हमेशा आप उसका अध्ययन करते हुए सबको बांटते रहते हो और आप सबको मालूम होगा कि अभी हमारे पास जो मुरली आती है उसमें जो वरदान स्लोगन आदि आते हैं लिखे हुए, वरदान का विस्तार भी बहुत अच्छा आप ही निकाल करके सबको भेजते हो। पत्र पुष्प आदि भी आपके द्वारा ही सभी सेंटर्स पर पहुंचते हैं। दादियों को जो भी पत्र में लिखना है आपको बुलाकर लिखवाते हैं। आप बहुत ही दादियों के समीप हो। सेंटर्स से भी जो पत्र आदि आते हैं वो भी आप पढ़ करके दादियों को जरूरी बातें सुनाते हो, देते हो। इसलिए दादियों से, बाबा से, आप यज्ञ से बहुत ही समीप हो और कारण यही है कि आप पर बड़ा विश्वास है। आप सागर के समान हो, सब कुछ पढ़ते हुए जानते हुए सब कुछ समा कर रखते हो और इसीलिए विशेष ये सेवा यज्ञ की आप कर रहे हो। इसके अतिरिक्त विशेष ग्राम विकास प्रभाग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हो। आप सेवाओं के लिए देश विदेश में भी चक्कर लगाकर आए हो और यहां जब कॉन्फ्रेंस आदि होती है और भट्टियां विशेष होती है, चाहे मधुबन वालों की हो, सेंटर्स वालों की हो, टीचर्स की हो या गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों की हो, सब में आप बहुत ही अच्छा अनुभव युक्त क्लास कराते हो। इसलिए आपकी विशेषता के कारण आप सबके प्रिय बने हो। सब आपसे बहुत कुछ भर करके जाते हैं। आपके लिए यही कहेंगे कि इस कलयुग की कुटिल रात्रि में आप एक जलती हुई मशाल हो। अलंकृत करो किन शब्दों से, आप बेमिसाल हो, आप बेमिसाल हो। तो आज राजू भाई की वाणी को हम बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आज का आपका विषय है योग की गहराई एवं प्रयोग, जो बहुत जरूरी है, बहुत कुछ सीखना है। तो हम अभी राजू भाई को विशेष अनुरोध करते हैं कि आपकी योग की गहरी अनुभूति के आधार से, प्रयोग के अनुभव के आधार से सबको लाभान्वित करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। मीठे मीठे बाबा की इस तपस्या भूमि में आप सभी बहुत बहुत दूर से योग तपस्या के लिए आए हैं। ये ऐसी भूमि है जहां पर कदम रखते ही योग लग जाता है। योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्वयं आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने, मातेश्वरी जगदम्बा ने और हमारी आदरणीय दादियों ने इस भूमि पर तपस्या की है। इसलिए मधुबन में तपस्या भट्टी का चांस मिलना और ऐसे ही सुंदर सुहावने मौसम के बीच में एक बहुत बड़ी गोल्डन लॉटरी आप सबको मिली है, अनुभव कर रहे हैं सभी। दूर की थकान तो दूर हो गई होगी ना कि नहीं, इतनी दूर से आसाम से गुवाहाटी से उनके आसपास से आप सब पहुंचे हैं। वैसे तो मैं आपसे गुवाहाटी में भी मिल चुका हूं, 2-3 बार मेरा जाना हुआ है और आज विशेष अपने इस मधुबन बेहद घर में जब आप योग की भट्टी करने के लिए आए हैं तो मैंने कहा कि हर एक को योग के गहरे अनुभव अवश्य होने चाहिए क्योंकि योग ही हमारी पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट है। बाबा हम सबका ध्यान मुरलियों में बार बार योग के ऊपर खिंचवाते हैं। आज भी बाबा ने बड़े प्यार के शब्दों में कहा कि नजर से नजर मिला लो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, यही सच्चा योग है। तो बाबा के साथ नजर मिलती है कि नहीं, कौन सी नजर मिलती है, ये नजर तो मिल नहीं सकती। बाबा के पास स्थूल में ये नजर नहीं है लेकिन दिव्य बुद्धि के नेत्र से जब हम बाबा को सामने अनुभव करते हैं देखते हैं तो बाबा की जो सूक्ष्म किरणें हैं जो बाबा की करंट है वो आत्मा पर आती है और जो भी विकर्म है पाप कर्म है कड़े संस्कार हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसी तपस्या करना ऐसी भट्टी का चांस लेना मैं समझता हूँ 3-4 दिन जो आप इस तपस्या भूमि में रहेंगे आज तक जो अनुभव न किए हों, कई बार हम 10-15 साल ज्ञान में चलते मुरली सुनते हैं लेकिन योग की गहराई क्या है, सही दिशा में योग किसको कहा जाता है उसको इतना स्पष्ट समझ नहीं पाते, प्रश्न ही रह जाते। कोई समझते हैं कोई चीज हमें दिखाई दे, मैं आत्मा को देखूं बाबा को देखूं मैं वतन में जाऊं, बहुत कुछ आशाएं लेकर के आते हैं और उन्हीं संकल्पों से योग करते हैं और अगर वो नहीं दिखाई देता तो निराश हो जाते हैं कि मेरा योग तो लगा ही नहीं। और बाबा कहता है कि मेरे बच्चे बन गए हो, बच्चे बनना यही योगी बनना है। तो मैं समझता हूँ आप सभी बाबा के बच्चे योगी बच्चे तो हो ही। बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे योगी जीवन वाले बन जाएं, उनका जीवन ही योगी है। खाना पीना उठना बैठना चलना कर्म करना जो कुछ करें वो बाबा के याद में प्यार में खोए हुए रहें, यही योग है। तो इस योग के अच्छे अच्छे अनुभव करने के लिए सबसे पहली विधि बाबा हम सबको बताते हैं, भ्रकुटी आसन पर मैं एक चमकती हुई मणि, इस देह से न्यारी एक आत्मा हूं। जितना आप इस आत्म अभिमानी स्टेज में नेचुरल रहने का अभ्यास करेंगे, भ्रकुटी आसन पर मैं एक सितारे की तरह चमक रहा हूं, इस देह से भिन्न हूं, ये एक बहुत सुंदर अनुभूति है जो देह और देही दोनों को अलग अलग अनुभव कराती है। यथार्थ योग की स्टेज में देह और देही का अलग भान आने लगता है, जैसे ये वस्त्र हमने पहने हैं तो मालूम रहता है कि ये वस्त्र अलग है मैं अलग हूं। ऐसे ही आत्मा अपने जब आत्मिक स्वरूप में स्थित रहती है तो उसे ये भान रहता है कि मैंने ये शरीर रूपी ड्रेस धारण की है, मैं इससे अलग हूं। और ये अभ्यास जितना जिसने किया वो सहज योगी स्वतः योगी बन ही जाएगा, क्योंकि आत्मा बहुत लाइट है, हल्की भी है और प्रकाश स्वरूप भी है, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल लाइट स्टेज। जो जितना डबल लाइट स्टेज में रहे उतना उस बाबा के साथ की अनुभूति कर सकता है। तो पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि यदि कोई भी अभी तक पिछला संस्कारों का बोझ है, कोई भी ऐसे हिसाब किताब है, कोई चिंतन है पास्ट का, क्योंकि बहुत से कर्म कर्मेंद्रियों ने विकारों के अधीन होकर के किए हैं और उस अधीनता के कारण कई विकर्म पाप कर्म बन गए हैं, उन्हें महसूस करके बाबा को सरेंडर करना है कि बाबा ये जो कुछ हुआ है ये पास्ट का विकर्म देह विमान के कारण हुआ, अज्ञानता के कारण हुआ, इसलिए उसको बाबा के हवाले कर दो। हल्के तभी बन सकते हैं जब कोई भी पास्ट का बोझ ऊपर न हो, चिंतन का, संकल्पों का, मैंने ये किया, मेरे से ऐसा हो गया, मेरे से ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका पश्चाताप अगर आत्मा करती ही रहती है, चिंतन चलते रहते हैं, तो डबल लाइट स्टेज का अनुभव नहीं होता। इसलिए बीती का चिंतन नहीं और कल की चिंता नहीं, कल क्या होगा, जो होगा वो बहुत अच्छे से अच्छा होगा, इसलिए वर्तमान मेरा अच्छे से अच्छा बीते, आज का दिन सबसे अच्छा हो, इस स्मृति से अभ्यास करना है हम सबको, वर्तमान में जीना सीख जाएं हम। इस समय अगर हम अपने श्रेष्ठ स्वरूप में, श्रेष्ठ स्वधर्म में, उस स्वदेश की और स्वपिता की स्मृति में रहने का निरंतर अभ्यास कर लें, चार बातें बता रहा हूं, स्वस्वरूप की स्मृति, मैं जो हूं जैसा हूं उस आत्मिक स्वरूप का अनुभव करना, फिर स्वधर्म में स्थित हो जाना, मेरा स्वधर्म शांति पवित्रता प्रेम है, और उस स्वधर्म में स्थित होकर के अपने स्वरूप के स्वधर्म के साथ अपने स्वदेश को देखना, हमारा घर जो परम पवित्र परम धाम है, जहां से हम आत्माएं इस सृष्टि मंच पर पार्ट प्ले करने के लिए आई हैं, अपने बुद्धि के विमान से उस घर में पहुंचना और स्वपिता के साथ उसके सानिध्य में बैठकर उनकी किरणों का अनुभव करना, उनकी सकास का अनुभव करना, जब वो भान आने लगता है कि मैं अपने पिता के पास परमधाम में एक ऊंची स्टेज पर स्थित हूं, तो परम धाम की ऊंची स्टेज आत्मा को समान बना देती है, जैसा बाबा ऐसा मैं, और जो बीच में मध्यकाल के संस्कारों के कारण विकर्म हुए उस योग अग्नि में स्वतः भस्म होने लगते हैं, वो संस्कार परिवर्तित होने लगते हैं। कई बार चलते चलते बहुत समय तक संस्कार इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, दिखाई देता है कि ये दबे हुए संस्कार, जब कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब कोई ऐसा वायुमंडल बनता है तो इमर्ज हो जाते हैं, उन संस्कारों पर हमारी कड़ी नजर हो, ये संस्कार जो मध्यकालीन देह विमान के बस कर्मों से बने हैं, उन संस्कारों का मुझे संस्कार करना है। जितना आप अपनी उस परमधाम की ऊंची स्टेज में स्थित होकर बाबा की किरणों का अनुभव करेंगे उतना आपके संस्कारों में दिव्यता आती जाएगी, साधारणता लौकिकता समाप्त होती जाएगी। तो इसलिए योग की गहरी स्टेज का ये अनुभव जिसमें मैं और मेरा बाबा, इसके सिवाय और कोई स्मृति नहीं है, शून्य संकल्प नहीं है। कल की मुरली में बाबा ने शून्य शब्द यूज किया था, बच्चे शून्य स्टेज है अशरीरी स्टेज। जैसे गर्भावस्था के अंदर जब गर्भ में बच्चा है उस शून्य स्टेज में है, उसको भान नहीं है मैं कहाँ हूं, लेकिन संकल्प शून्य नहीं होते, शून्य भी नहीं होते और शून्य भी नहीं होते। कुछ अच्छे अनुभव के संकल्पों में आत्मा समाई रहती है, हमारा योग जड़ता नहीं है। अगर जड़ हो जाएंगे, अनुभूतियां ही नहीं होंगी, तो विकर्म दग्ध हुए इसका अनुभव हम कैसे करेंगे। इसलिए जड़ स्थिति का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस कर्म क्षेत्र पर हैं, इस शरीर के अंदर हैं, अलग हो जाएंगे निकल जाएंगे तो संकल्प समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है कुछ न कुछ संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों की गति पर हमारा नियंत्रण हो, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ऐसे अपने आप से बातें करो। जब योग अभ्यास करते हैं तो सबसे पहली नजर जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है तो उसकी दो शक्तियां अपना कार्य प्रारंभ करती हैं, एक संकल्प शक्ति, दूसरी बुद्धि विवेक शक्ति। संकल्प के भाव हैं, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, जहां संबंध है जहां स्नेह है जहां प्राप्ति है उधर वो ऑटोमेटिक जाएगा, आप चाहें न चाहें, उसकी वो रूट बनी हुई है, उस रूट की तरफ हो जाएगा। बुद्धि कहेगी भी ये जरूरी नहीं है इस समय, लेकिन वो बार बार रोकने का प्रयास करते भी वो इधर से उधर भटक जाएगा। बाबा ने हम सबको मन जीत स्टेज में स्थित किया है। बच्चे, मन जीत स्टेज ये है कि कोई भी माया के संकल्प ना आए, कोई भी विकारी संकल्प ना आए, कोई भी लौकिक संकल्प ना आए, लेकिन एक शुद्ध संकल्प, मैं एक अजर अमर चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, एक प्रकाश स्वरूप हूँ और मैं असली परमधाम निवासी हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, इस शुद्ध संकल्पों में अवश्य चिंतन चलना ही है, चलना ही चाहिए। और ये संकल्प चलते चलते, चार स्टेजेज हैं। पहली स्टेज के अंदर हम मनन करते हैं, मन के अंदर अच्छे अच्छे संकल्प क्रिएट करते हैं जिससे वो इधर उधर जाना बंद कर देता है। ज्ञान के संकल्प, अपने भाग्य के संकल्प, भगवान के मिलने के संकल्प, बहुत अच्छा एक चिंतन मन के अंदर चलता है जिसको हम मनन कहते हैं। फिर मनन करते करते वो मग्न स्टेज आती है, आत्मा जैसे उस मग्न हो गई, लव लीन हो गई, वो समझते हैं ज्योति में लीन हो गई, लेकिन वो प्यार में लीन हो गई, उस प्यार में खो गई, ये मग्न स्टेज बनती है। और मग्न के बाद अगर कुछ वर्णन होता है तो वही शब्द मुख से निकलते हैं जो अनुभव किए जाते हैं, ये तीसरी स्टेज में वर्णन है। और चौथी स्टेज है एकदम लगन लग गई, प्यार में खो गई, लगन लग गई, जिसकी लगन एक से लग गई उसकी बुद्धि इधर उधर जाना बंद कर देती है, न देह की दुनिया, न देह के संबंध, न देह के पदार्थ। हम सब देह दुनिया पदार्थ संबंधों से ऊपर उठ जाएं, ये आत्मिक स्टेज के अभ्यास से ही हो सकता है। 84 जन्म हम इस देह के साथ रहे हैं, भले किस जन्म आत्म अभिमानी स्टेज रही है, देवहान ने अपना अटैक नहीं किया, लेकिन 63 जन्म तक बॉडी कॉन्शियस के कारण जिसको मैं समझा, इस देवहान को मैं समझ लिया, और इसी कारण हमारे जो कार्य हुए उसमें अहम था, अहंकार समाया हुआ था, और उसी अहंकार ने अनेक प्रकार के विकर्म कराए हैं। अभी संगम के थोड़े समय में रियलाइज करना कि मैं जो हूं उसी स्वरूप में स्थित हो जाऊं, और उस स्वरूप में स्थित होकर के उसका मनन करते करते मग्न और लग्न की स्टेज बन जाए। तो ऐसी स्टेज जब स्थित होते हैं उस स्वरूप में, तो ऐसे लगता है कि जैसे एक स्टेज के अंदर सागर के तले के अंदर जाते हैं, जैसे ज्ञान सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, स्थूल सागर की भेंट हम इस रूहानियत ज्ञान के गुणों के सागर से करते हैं, कि उस सागर में बहुत लहरें हैं लेकिन तले में बहुत शीतलता है, बहुत स्थिरता है, बहुत शांति है, बहुत रतन है। तो योग की एक गहरी स्टेज के अंदर जब आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित होती है और ज्ञान सागर बाबा का अनुभव करने लगती है, तो सागर के तले में समा जाती है। ऐसे लगता है कि कुछ भी बाहर की दुनिया नहीं है, मैं और मेरा बाबा बस, उस सागर की शीतलता, सागर की शांति, उसका गहन अनुभव आत्मा करती है। वो संकल्प चल रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन वो बहुत सीमित हैं, अनुभव के हैं, समाने के हैं। बाहर आते हैं तो ज्ञान सूर्य की किरणें हैं, जैसे सागर में कोई स्नान कर ले और बाद में बाहर आकर के धूप में लेट जाए शरीर स्टेज में, ऐसे ही जब सागर के तले से ऊपर आए, ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें मुझात्मा के ऊपर आ रही हैं, शरीर स्टेज का बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है, वो किरणें आत्मा को पावन बना रही हैं, स्वच्छ बना रही हैं, वो हमारे किचड़े को समाप्त कर रही है, हमारे रूप का परिवर्तन कर रही है। जब ऐसी सुंदर स्टेज बनती है, एक समाने की स्टेज है, एक अनुभव की स्टेज है, और उसके बाद जब उस स्वरूप में आत्मा स्थित होती है, तो ऐसे लगता है सारे वृक्ष को बहुत अच्छी शक्तियां मुझ बीज से मिल रही हैं, पूरी मनुष्य सृष्टि इस बीज से संचालित है, उसको इससे जल प्राप्त हो रहा है, बीज रूप स्टेज में बड़े सुंदर अनुभव होने लगते हैं। तो ये 3 स्टेजेस 4 स्वरूप के माध्यम से बन पाती हैं। 4 स्वरूप बताए, पहले स्वस्वरूप का चिंतन, स्वधर्म, स्वदेश, स्वपिता, और फिर ये 3 स्टेजेस जब बनी तो सागर के तले में चले गए, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठ गए, और फिर धीरे धीरे सारे वृक्ष को शक्तियों का जल दे रहे हैं, सेवा हो रही है। तो ऐसे गहरे अनुभव इस भट्टी के अंदर आपको करने हैं। साधारण योग तो आप घर में भी करते हैं, कर्म में भी करते हैं, चलते फिरते भी करते हैं, बाबा 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 की धुन तो सदा लगी रहती है, बाबा मिला है, बाबा ने इतनी श्रेष्ठ जीवन बनाई है, कहाँ से निकाला है, क्या से क्या बनाया है। मैं समझता हूँ ऐसा कोई बाबा का बच्चा नहीं होगा जिसके दिल से बाबा तेरा शुक्रिया दिल से न निकलता हो, बाबा आपने मुझे क्या से क्या बना दिया, कहाँ थे, क्या कीचड़ में पड़े थे, क्या खाते थे, क्या बोलते थे, कैसा जीवन थी, और आपने मुझे उस कीचड़े से निकाल करके इतना साफ, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र बना दिया। अभी बनाया है ना कि भविष्य में बनाएगा, भविष्य तो बाद की बात है, संगम पर हम सबको इतनी अच्छी जीवन बाबा आपने दी है, तो इतना प्यार बाबा के प्रति निकलता है कि बाबा मैं तो आप की कितनी शुक्रिया मानूं, कितना एहसान मानूं कि आपने मुझे ऐसी जीवन दे दी। कोई भी जाति रंग भाषा कोई भेद नहीं, मेल फीमेल का भी भेद समाप्त कर दिया, मैं आत्मा हूं बस, और इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, जिसको स्वयं भगवान श्रृंगार कर रहे हैं, अपनी शक्तियों से श्रृंगार कर रहे हैं, गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य मुझ आत्मा को इस संगम पर प्राप्त है। योग नहीं है ये, करते हैं चिंतन ऐसा है? योग है ना यही, कि योग दूसरा कुछ है, ये नहीं कहना मेरा योग नहीं लगता है, मैं क्या करूं। खो जाओ बाबा के प्यार में, जो कुछ बाबा से मिला है उसका अपने आप में चिंतन करो, क्या बाबा आपने दिया है। बाबा कहता है जो गोपिकाएं होती हैं वो बाबा के प्यार में आंसू बहाती है, प्रेम के आंसू। तो प्यार में समा जाना ही योग है, और ऐसा योग करते करते एकदम मग्न स्टेज बन जाती है, खो जाती है आत्मा उस प्यार में। इसकी बहुत सुंदर निशानियां दिखाई देती हैं, बहुत सी निशानियां योगी जीवन के अंदर दिखाई देने लगती हैं। ये कर्म इंद्रियां बहुत शीतल हो जाती है, सुगंधित हो जाती है, अंग अंग सुगंधित, अंग अंग शीतल, शीतल काया वाले योगी बन जाते हैं, उत्तेजनाएं समाप्त हो जाती है। सच्चा योग अगर है, यथार्थ योग हमने किया है, एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी बच्चे, एक मिनट भी उसे अच्छे स्टेज के पावरफुल स्टेज का अनुभव कर लो तो कई घंटे तक उसका प्रभाव रहता है। अगर कुछ समय भी इस स्टेज में आप बैठ जाएंगे, आपको बाहिमुक्ता समाप्त हो जाएगी, अच्छा ही नहीं लगेगा, हंसना बहलना बोलना, बहुत ताक में आना, जैसे लगेगा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, आवाज सुनना अच्छा नहीं लगता। वो आवाज से परे की स्टेज बन जाती है, जो वायुमुक्ता समाप्त हो जाती है। एक एक कर्मेंद्रियां शीतल होने के कारण मुख से वही शब्द निकलते हैं जो दूसरों को सुख देने वाले होते हैं। कभी भी मुख कोई ऐसे शब्द नहीं निकाल सकता। योगी की मुख्य कर्मेंद्रियां, जिसको ज्ञान इंद्रियां कहा गया है, ये आंखें, जबान, मुख, अलग अलग बता रहे हैं, ये कान, ये त्वचा, ये पांच ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं। ये पांचों ज्ञान इंद्रियां आत्मा के नियंत्रण में आ जाती है। मुख दो कार्य करता है, एक बोलने का है, दूसरा खाने का है। ये जीभ जो है, अगर ये जीभ इन दो चीजों पर अपना कंट्रोल कर ले, बोलने पर और खाने पर, एक तरफ स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, दूसरी तरफ संबंध अच्छे हो जाएंगे। स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है जीभ, जो देखा वो खा लिया, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जिसकी आदत बन गई उसके पीछे जबान चलायमान हो जाती है। और बोलने की अगर अधिक आदत बन गई, जो आया बोल दिया, कहीं न कहीं अधिक बोल नुकसान कर देते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए आंखें तो धोखा देती हैं योगी की, आंखों पर तो बाबा कितनी मुरलियां चला रहा, बच्चे इसको सिविलाइज्ड बनाओ, इनको पवित्र बनाओ, देखो ही नहीं, देह को देखोगे, मस्तक के नीचे देखोगे तो ये सांप शरीर रूपी डस लेगा, मैं आत्मा मणि को देखूं। अभ्यास करो भ्रकुटी की, आसन पर विराजमान ये चैतन्य मणि है, ये आत्मा है। तो अभ्यास करते करते जब योगी जीवन बन जाती है, तो ये कर्म इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाती, चंचलता समाप्त हो जाती, वासनाएं और उत्तेजनाएं समाप्त हो जाती। जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारे एक एक संकल्प शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, व्यर्थ समाप्त हो जाए, अपवित्रता समाप्त हो जाए, उन सब का यही यथार्थ पुरुषार्थ है। और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल ये एक मेहनत अगर हम कर लें तो सचमुच ऐसे लगेगा ये जीवन कितनी श्रेष्ठ है, कितनी महान है। और उसके जो वाइब्रेशन है, उसकी जो एक अंदर की वृत्तियों से वायुमंडल बनता है, वो बहुत सबका एकदम प्रिय हो जाता है, सबका प्रिय हो जाता है। हम अपनी दादियों को देखते हैं, इतनी निर्मल, इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र, जो इतने समय से उन शुद्ध संकल्पों में रमण करने वाली हैं, जहां बैठ जाती हैं सब उनको घेर लेते हैं आकर के, सबको बहुत अच्छी लगती हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, दृष्टि लेना चाहते हैं। क्यों? उनका जो आभा मंडल है, जो उनके विचारों से एक शुद्ध ओरा बन करके तैयार हुआ है, वो हम सब आत्माओं को आकर्षित करता है। हम सब बाबा के एक एक बच्चे इस अभ्यास के द्वारा अपने इस पवित्र आभा मंडल को क्रिएट करें, खुद क्रिएट करो। ये मनसा सेवा और कुछ नहीं है, परिस्थिति रूप की सेवा, मनसा सेवा, योग के प्रयोग, जिस बात को हम कह रहे हैं उसकी यथार्थ विधि यही है। जितना आत्मा का ये पवित्र आभा मंडल, शुद्ध विचारों का ओरा निर्मित होता है, उतनी दूर दूर तक उसकी सकास जाती है। जो चाहे वो आप कर सकते हैं, लेकिन कितना समय आप उन पवित्र संकल्पों में रमण करते हैं। साधारण संकल्प हैं, व्यर्थ संकल्प हैं, आप मनसा सेवा करना चाहेंगे तो हो सकेगी? बाबा ने एक बार मुरली चलाई थी, वाणी की सेवा तो किसी भी स्थिति में की जा सकती है। मान लो आज आपकी मूड खराब है, आपके सामने कोई आ गया, आपको ज्ञान सुनाना पड़ता है, क्या करेंगे? थोड़ा समय चेंज करके, फ्रेश होकर के आकर के ज्ञान सुनाना शुरू कर देंगे, मूड को ठीक कर लेंगे, भाई हो गया, जो बीत गया। अच्छा, वाणी की सेवा तो आप उस मूड की स्थिति, जब बिगड़ी हुई मूड थी तभी भी कर रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर मनसा बिगड़ी हुई है, मनसा में अपवित्र ख्याल चल रहे हैं, किसी से बदला लेने की भावनाएं हैं, क्रोध की भावनाएं हैं, हिंसा की भावनाएं हैं, वैर भावनाएं हैं, कोई भी प्रकार की विपरीत भावनाएं हैं, विकृति वाली हैं, विकारों वाली हैं, तो मनसा कहां प्रयोग हो सकती है? वो तो उसी में उलझी हुई रहेगी। जितनी मनसा शुद्ध पवित्र एकदम निर्मल होती जाएगी और बहुत काल तक उस स्थिति में रहेगी, उतनी उसकी मनसा अपने आप चारों तरफ फैलेगी। कहते बल्ब जितना पावरफुल है, लाइट उतनी दूर दूर तक जाती ही है, उसको जाना नहीं पड़ता। बल्ब नहीं जा रहा कहीं, सूर्य कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन सूर्य एक ही स्थान पर होते हुए चारों तरफ से अपनी लाइट, अपनी शक्तियां भेज रहा है, परिवर्तन हो रहा है। सूर्य की स्टेज में जो प्रयोग हो रहे हैं, हम आप सब देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, एक प्रकृति का तत्व, अग्नि तत्व, सूर्य की शक्तियां क्या क्या कमाल कर रही हैं। एक खारे पानी को मीठे पानी में बदल देती हैं। साइंस बहुत से प्रयोग करके खारे को मीठा बनाना चाहता है, लेकिन बहुत लिमिट हो गई, नहीं कर सका। ये सूर्य कितनी शक्ति है उसके पास कि लाइट के साथ जो माइट दे रहा है, शक्ति दे रहा है, उससे समुद्र का खारा पानी हमको मीठे के रूप में पीने को मिल जाए। एक सूर्य की शक्ति है जो इस संसार के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह कर रही है। अगर कुछ समय सूर्य निकलना बंद कर दे, ऑक्सीजन मिलेगी, गंदगी दूर होगी। ये सूर्य की शक्ति इतनी सारी सेवाएं हम सबके लिए उपलब्ध करा रही है, प्रकृति का तत्व है। और बाबा हम सबको कहता है, हे योगी आत्माएं, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। इस धरती के किचड़े को समाप्त करने के लिए, इससे विकारों की सफाई करने के लिए तुम कितना समय अपनी इस पावरफुल स्टेज पर रहते हो, विचार करो। क्या मैं उस स्वरूप में स्थित होता हूं कि मैं बाबा का, बाबा ज्ञान सूर्य है, मैं बाबा का बच्चा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, और ज्ञान सूर्य बन करके अपनी ज्ञान की, पवित्रता की, शांति की लाइट विश्व में फैला रहा हूं। ये पावरफुल स्टेज है योग की, समझ रहे हैं कि ज्यादा भारी तो नहीं लग रहा है, क्या समझ रहे हैं आप सब, कर सकते हैं ऐसा अभ्यास? कहेंगे ये तो बड़ी बातें सुनाई जा रही हैं, ऐसा तो नहीं माताएं समझती हो क्या? बाबा बाबा कहना ही ठीक है ना, वो तो ठीक है, योग तो करते ही हो, बाबा के तो हो ही, लेकिन ऐसा कुछ अभ्यास करके यहां से जाओ, अनुभव करके जाओ। एकांत मिली है, इतना अच्छा वायुमंडल मिला है, इतना अच्छा संगठन मिला है, इतना अच्छा चारों तरफ से साइलेंस का वातावरण है, इसके बीच में अगर अनुभव नहीं कर पाएंगे, यहां नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? इसलिए यहां पर वो पावरफुल स्टेज बन जाए कि मैं और मेरा बाबा बस, ज्ञान सूर्य की किरणें ऐसे लो ऐसे, तो और कोई मनसा सेवा नहीं, ये प्रयोग नहीं योग के, योग के प्रयोग केवल अपनी बहुत शुद्ध शक्तिशाली स्टेज में स्थित होना। आत्मा लाइट है, स्वच्छ है, हल्की है, और उस पर बाबा की ऐसे किरणें आ रही हैं जैसे एक कांच लगा हो, बहुत साफ स्वच्छ हो, और सूर्य की तरफ अगर कांच हो तो उसके ऊपर सूर्य की किरणें आएंगी। किरणें वो साधारण ही हैं जो आ रही हैं, लेकिन सूर्य की किरणें जब कांच पर आती हैं और उसके द्वारा अगर रिफ्लेक्ट होने लगती हैं, क्या होता है? आग पैदा कर देती है, बहुत शक्तिशाली होती है, वो उस किरणें सहन नहीं होती। कहेंगे इस कांच के ऊपर कुछ लगा दो, यहां से बहुत तेज किरणें आ रही हैं। कांच कुछ नहीं कर रहा है, कांच तो अपनी शक्ति अपनी जगह पर है, लेकिन वो सूर्य की तरफ होने के कारण, साफ स्वच्छ होने के कारण, सूर्य की किरणों को ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, और उसमें शक्ति है रिफ्लेक्ट करने की, इसलिए वो अग्नि पैदा हो रही है। यही योग का प्रयोग है। ये मन रूपी कांच, ये बुद्धि रूपी कांच इतना स्वच्छ, इतना साफ पवित्र, और कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, नेगेटिव संकल्प नहीं, साधारण संकल्प नहीं, मैं एक बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा हूं, इस स्वरूप में स्थित है। उस कांच के ऊपर बाबा की ऐसे लाइट आ रही है, सर्व शक्तियों की किरणें आ रही हैं और वो रिफ्लेक्ट हो रही है। प्रयोग है यही, संबंधों पर प्रयोग करो, कोई भी ऐसे विघ्न है, बहुत रुकावटें आ रही है मार्ग में, उस पर प्रयोग करो, अपनी कर्म इंद्रियों पर प्रयोग करो, अपने कोई बीमारी है शारीरिक उन पर प्रयोग करो, सिर्फ उन शक्तियों को एकाग्र करके उनको रिफ्लेक्ट करना, और क्या करना है, यही योग का प्रयोग है। ठीक है, कर सकते हैं ना, करेंगे, सब करके देखना, बहुत सारी बातें अपने आप सुलझ जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। योगी के संकल्पों में वो शक्ति आ जाती है, जो सोचता है वो होने लगता है। कैसे हो रहा है? ऐसे नहीं मेरी शक्ति से हो रहा है, उसके ऊपर बाबा की शक्तियां आ रही हैं और वो शक्तियां रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इसलिए सब हो रहा है। आज इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, एक बार बाबा ने दादी को ऐसे ही बोला, यज्ञ कैसे चलता है, आप लोग बैठी हैं, आपकी सूक्ष्म सकास से यज्ञ चल रहा है। तो दादी ने कहा, बाबा बैठा है ना, बोला बाबा तो दे रहा है ऊपर से सकास, लेकिन आप पवित्र आत्माएं जो यहां बैठ करके तपस्या कर रही हैं, आपके ऊपर बाबा की किरणें जब आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर के यज्ञ को निर्विघ्न चला रही हैं। समझ रहे हैं? दादियां नहीं चला रही हैं, लेकिन बाबा चला रहा है, लेकिन कैसे चला रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, व्यर्थ और नेगेटिव को स्थान ही नहीं उनके पास, बाबा की किरणें डायरेक्ट उनके ऊपर आ रही हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर के संकल्प शक्ति से सारी कारोबार चल रही है। इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, हजारों आत्माएं आती हैं जाती हैं, रिफ्रेश हो जाती हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बड़े पावरफुल हैं जो बाबा की शक्तियों को कैच करके करा रहे हैं। हम सबको भी बाबा का ऐसा शक्तिशाली पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बनना है कि बाबा इससे जो कराए वो अच्छे से अच्छा काम होने लगे, इस दुनिया से सब किचड़ा समाप्त हो जाए, ये विकार दग्ध हो जाए, सृष्टि स्वच्छ स्वतो प्रधान बन जाए, इसकी तमो प्रधानता खत्म हो जाए, इसके लिए तो हम योग कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? किस लिए भट्टी कर रहे हैं? केवल अपने लिए? हमारे भी ऐसे कोई संस्कार हों, कोई ऐसी आदतें हों जो मुझे परेशान कर रही हों, वो तो समाप्त करनी ही है, वो तो पहला इसका काम है। लेकिन उसके साथ साथ आत्मा इतनी पावरफुल बन जाए जो हमारी मनसा से अनेक आत्माओं का भला हो, कल्याण हो, उनके दुख उनकी उलझने समाप्त हो जाएं। बाबा भी इसमें इस सेवा के लिए हम सबको तैयार कर रहा है। इसके लिए तैयार रहो कि ये सेवा मुझे करनी है। वाणी से सेवा करना सहज है, लेकिन इस मनसा सेवा के लिए मन बहुत शुद्ध बहुत निर्मल सब प्रकार की उलझनों से मुक्त चाहिए। किसी भी प्रकार में उलझे हुए होंगे तेरे मेरे में तो ये मन सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए इस मधुबन की तपस्या भूमि में सब उलझनों को बाबा हवाले कर दो। बाबा ये तेरी है, मेरी नहीं है, मैं तेरा हूं, मैं आपका हूं और आप जो चाहे इसे कराओ। मैं तो यही अनुभव करता हूं कि बाबा आपको जो कराना है करा लो, मैं आपका बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन के रहूं। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, किन्हीं बातों में जाने की जरूरत नहीं है, जो करेगा हो पाएगा, मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं इस स्वरूप में स्थित हो जाऊं कि मैं तो बाबा आपका अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन के रहूंगा, इस पर कोई भी मैल नहीं आने दूंगा, ईर्ष्या की, द्वेष की, नफरत की, अहम की, बहम की, ये सारी धूल है ना। बहुत सारी ऐसी हम लोगों ने पकड़ के रख ली है, छोटी छोटी बातों में उलझ गए हैं, ये ऐसा करता वो ऐसा करता, यहां ऐसा होता वहां ऐसा होता, पर चिंतन पर दर्शन। बाबा कहता है क्यों अपना समय गंवा रहे हो। इस बार बाबा ने कहा दो शक्तियों पर यदि नियंत्रण हो जाए, अधिकार हो जाए, तो आप मास्टर विश्वपति बन सकते हो, विश्व का राज्य भाग मिल सकता है। केवल दो शक्तियों पर कंट्रोल करो, व्यक्त मुरली में था, समय की शक्ति और संकल्प की शक्ति, ये दोनों हमारी बहुत व्यर्थ जा रही हैं। जिनमें नहीं लगना चाहिए समय वहां लग रहा है। संगम का इतना वैल्यूबल समय है, बाबा कहता बच्चे इसमें जो चाहिए पद्मों की कमाई कर सकते हो, जितना समय के लिए चाहिए जो चाहिए बना सकते हो भाग्य, लेकिन तेरे मेरे में इधर उधर की बातों में समय जा रहा है व्यर्थ, उसको बचाओ। जितनी बचत कर सकते हो समय कहीं भी व्यर्थ न जाए, किन्हीं बातों में न जाए। इसलिए अपनी घोर तो नशा चढ़े, अपना चिंतन करो, अपनी प्राप्ति का स्मरण करो, मैं क्या करने आया हूं, मुझे क्या करना है, मुझे भगवान ने क्यों चुना है, मेरी क्या सेवाएं हैं, मेरी क्या जवाबदारियां हैं। आप देखो जब मेरा अपना चिंतन अच्छा चलेगा तो कई प्रकार की व्यर्थ से हम स्वतः मुक्त हो जाएंगे, संकल्प भी हमारे बड़े पवित्र और शुद्ध हो जाएंगे। ये दोनों एनर्जी जिस ब्राह्मण आत्मा ने अधिकार में रख ली, उसके संकल्प और समय उसको बहुत कुछ मदद कर रहे हैं। समय भी उसको धोखा नहीं दे सकता और संकल्प भी कभी भी इधर उधर नहीं भटकाएंगे। यही योगी की सबसे पहली स्टेज में इस पर नियंत्रण चाहिए, कंट्रोल चाहिए। और इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी विधियां बाबा सुनाता है। जो मुरली हम सुनते हैं ना, उसमें बहुत सारी विधियां हैं। कभी इस विधि से नोट करो कि इसके लिए ये विधि है, इसके लिए ये विधि है। मैं कभी कभी नोट करता हूं इस स्थिति को बनाने के लिए ये विधि है। कोई भी वरदान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ऐसे ही बाबा ने तथास्तु के रूप में वरदान दे दिया हो। तथास्तु नहीं है भक्ति की तरह हो जाएगा हो गया, ऐसा नहीं है। उसकी विधि है, उस विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चलेगा तो वो सिद्धि मिलेगी। ऐसे ही नहीं मिल गई है कि हम बहुत पवित्र आत्मा बन गए, हर कर्म हमारे सिद्ध होने लगे, संकल्प सिद्ध होने लगे, सफलता मूर्त भव, कितने सारे वरदान बाबा देता, संतुष्ट मणि भव, सफलता मूर्त भव, सुखदाता भव, बहुत सारे वरदान हैं। लेकिन उन वरदानों की प्राप्ति के लिए कोई न कोई विधि है। अगर उस विधि प्रमाण हम नहीं चल रहे हैं तो वरदान काम नहीं करेंगे। हर वरदान के अंदर आप नोट करेंगे पहली लाइन के अंदर ही वरदान के साथ कुछ न कुछ विधि है। उस विधि को अगर हम प्रैक्टिकल में मनन करके चिंतन करके स्वरूप में लाएंगे तो वरदान अपने आप काम करने लगेगा। तो हम सब बाबा के बच्चे इस समय मास्टर बन करके बाबा के समान उस स्टेज को पा करके बाबा के कार्य में संपूर्ण सहयोगी और मददगार बनकर बाबा की आशीर्वाद उनकी दुआएं जितना चाहें उतना ले सकते हैं। तो योगी स्वप्रयोगी है, ठीक है। केवल योग लगाने वाले नहीं, योग लगा रहे हैं 10 साल से योग लगा रहे हैं, संस्कार जरा भी चेंज नहीं हुए, वैसे के वैसे ही हैं, गुस्सा गया ही नहीं, विकारी संकल्प स्वप्न शांति नहीं हो रहे हैं, मोह ममता खत्म ही नहीं हुई, किसलिए योग लगा रहे हो, किसलिए मेहनत कर रहे हो? कोई तो एम ऑब्जेक्ट होगी ना मेहनत करने के। भाई आप लोग इतनी दूर से आए, इतना खर्चा करके आए, इतना समय निकाल करके आए, इतने सारे कार्य बंद करके आए, किस लिए आए हो? घूमने के लिए, ठंडी हवा खाने के लिए? तपस्या करो, योग की तपस्या करो, और उस तपस्या के अंदर जो ऐसे संस्कार हों, जो परेशानी दे रहे हों, जो हमारे उन्नति में बाधक हों, विघ्न रूप हों, उनको समाप्त स्वाहा कर दो। प्रयोग करो योग का, बैठ जाओ ऐसे शांति से, कुछ और कुछ करना नहीं है, एकदम अपने उस स्वरूप में स्थित हुए और बाबा के ऐसे लाइट ली और उसको ऐसे प्रयोग किया, ये शक्ति जा रही है और ये संस्कार गल रहा है। ये हमारी जो हार्ट की, हार्ट वालों की कैट प्रोग्राम चलते हैं ना यहाँ शांतिवन में, 3-4 दिन में योग करके वो अपनी आर्टरी खोल रहे हैं, और हम लोग 10-10 साल से योग लगा रहे हैं फिर भी ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। कारण प्रयोग करना नहीं आ रहा है। योग तो कर रहे हैं सभी, लेकिन यथार्थ विधि अनुसार प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब उस योग की शक्तियों का प्रयोग करो, यूज करो उनको। बाबा की ऐसे शक्ति ली, ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, वो सागर है ना सबका, और आत्मा उसका स्वरूप है, उसमें बैठ गई, स्थित हो गई, एक एक गुण बाबा से लेकर के आत्मा भरपूर हो रही है और वो शक्तियां अपना काम कर रही हैं। जितना हमारे गुणों में संपूर्णता आती जाती है, संपन्नता आती जाती है, उतना वो गुण शरीर को निरोगी बना रहे हैं। लेकिन योग करके बाबा की शक्तियों को लेकर के फिर प्रयोग करना जरूरी है, और प्रयोग के लिए मन की एकाग्रता चाहिए, बहुत एकाग्रता, हलचल नहीं चाहिए। ऑपरेशन के समय सुन्न क्यों करते हैं, क्यों बेहोश करते हैं? कि अगर हिल रहा होगा पेशेंट, थोड़ा भी हिल जाएगा तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, सुन्न कर दो इसको पहले। इसलिए योग के अंदर स्थिर होकर, एकाग्र होकर के बैठो, बाबा की किरणें आएंगी और वो किरणें अपना काम करेंगी, वो प्रयोग शुरू हो जाएगा। तो शारीरिक कोई भी ऐसे हिसाब किताब हो, कोई भी प्रकार के पारिवारिक विघ्न हो, सामाजिक रुकावटें हो, किसी भी प्रकार का विघ्न हो, जितनी स्थिरता, जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, बाबा की वो किरणें आएंगी और वो कार्य अपना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो मन की एकाग्रता से स्थिर होकर बहुत अच्छा अभ्यास कर लो। कोई भी इधर उधर के संकल्प आए उनको बोलो अभी आपके लिए समय मेरे पास नहीं है, उन संकल्पों को ऐसे रोक दो और अच्छे अच्छे संकल्प करके बाबा के पास पहुंचो, बुद्धि से बाबा को देखो, जो आज कहा ना नजर से नजर मिला दो, ये नजर नहीं मिलाना लेकिन बुद्धि की नजर से उस बाबा को ऐसे देखो, कैसा लाइट है, माइट है, शक्ति है, और वो सर्व शक्तिमान की शक्ति मेरे साथ है। एक नजर मिल गई, विकर्म विनाश हो जाएंगे, संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन नहीं मिल रही नजर, इसलिए भटक जाती है, इधर चली गई उधर चली गई, संस्कार चेंज नहीं होते। तो जितनी एकाग्रता है, स्थिरता है, स्वच्छता है, स्पष्टता है, समझ गए, एकाग्रता के बाद स्थिरता आती है, स्थिर हो जाता मन, एकदम भटकना बंद हो जाता है, और जब स्थिर हो जाता है तो एकदम स्वच्छ हो जाता है, कांच जैसा, फिर स्पष्ट उसके अंदर जो हूं जैसा हूं दिखाई देने लगता है। अभी तक कई लोगों को अपने कई कड़े पुराने संस्कारों की महसूसता ही नहीं होती, परिवर्तन कैसे होगा अगर आप महसूस ही नहीं करो ये मेरा गलत संस्कार है, मेरे अंदर ये नहीं होना चाहिए। बदल सकता है कोई? विचार करो, अगर मेरे को गुस्सा आता है लेकिन मुझे लगता नहीं मैं गुस्सा करता हूं, समझता है तो करना ही पड़ेगा ना, इसकी तो जरूरत ही है ना। लेकिन मुझे अंदर नहीं होना चाहिए, जब तक मैंने उसको रियलाइज नहीं किया, महसूस नहीं किया, तब तक उसको परिवर्तन करने का कदम ही नहीं उठाया, बदलेगा ही नहीं। इसलिए जो ऐसे संस्कार हो पहले महसूस हो, और महसूस तभी होते हैं जैसे जब बहुत साफ कपड़ा होता है ना तो थोड़ा सा भी कहीं दाग होता है फर्श लगता है दाग लग गया, इसको मिटाना चाहिए। तो जितनी स्पष्टता आती जाएगी ना उतनी महसूसता की शक्ति बढ़ जाएगी। कोई ऐसा संस्कार होगा, ये संस्कार मेरे इस ब्राह्मण जीवन में विघ्न है, मेरे को नहीं इसको अपनाना है, बाबा की किरण लेंगे उसको साफ कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत स्पष्टता, और वो आई एकाग्रता से। इसलिए पहले बहुत इधर उधर के संकल्प जो चल रहे हैं, ऐसे कोई संकल्प आपको परेशान करते हो तो मैं एक अच्छी युक्ति बताता हूं, आप अपनी डायरी पर वो लिख डालो, डायरी पर लिख दो, डायरी पढ़ाने वाली नहीं, किसी को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो संस्कार जो आपको परेशान करने वाला है उसको लिख डालो, और लिख करके बाबा के सामने बैठना और बाबा की जो बॉक्स लगाया ना उसमें डाल देना, बाबा ये तेरा है ये ले ले अपना, मेरे को अभी रिटर्न नहीं चाहिए इसका। वो संस्कार लिख करके बाबा को ऐसे दे दो, और बहुत हल्के होकर के एकदम बाबा से शक्ति लेके आप देखेंगे वो संस्कार सदा के लिए बाबा भस्म कर देगा, फिर एकदम स्वच्छ हो जाएगी आत्मा, निर्मल हो जाएगी। और अगर कोई ऐसे संस्कार बार बार इमर्ज हो, बार बार आ रहे हों, तो बस बाबा से ऐसे किरणें लेकर के लाइट माइट की वो शक्ति आई मेरे ऊपर और मैंने उसको ऐसे रिफ्लेक्ट किया, ये संस्कार समाप्त हो रहा है, मैं तो एक बहुत शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो पवित्र आत्मा हूं, मैं जो हूं जैसी हूं जब बाबा के घर से आई थी मुझे तो वैसे ही जाना है, बीच के मध्यकाल के मेरे संस्कार नहीं है। जब ऐसे संकल्पों की एक अच्छी विधि यूज करेंगे, ये संकल्प की विधि है, ऐसे सिद्धि मिलने लगेगी, सफलता अनुभव होने लगेगी, आपको लगेगा मेरी वाणी बड़ी निर्मल हो गई, अहंकार एकदम समाप्त हो गया, उत्तेजनाएं खत्म हो गई, चाहे निंदा कोई करे चाहे महिमा कोई करे, योगी माना निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय दुख सुख सब में समान, इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा ही नहीं, वो स्टेज योगी की बन जाए, उसके लिए आप भट्टी करो तपस्या करो। तो ऐसी तपस्या करके ऐसे कड़े कोई संस्कार हो उनको प्रयोग से समाप्त करके एकदम प्योर शुद्ध आत्मा बन करके यहां से जाना है। ओके, ऐसा अभ्यास करेंगे ना सब कि नींद करेंगे योग के अंदर, कई लोग थोड़े समय के बाद झूमने लगते हैं, ध्यान रखना, क्यों शांति का अच्छा अनुभव होने लगता है ना, तो ऐसा शांति का अनुभव नहीं करना है, मन को अच्छा अच्छा वर्क दो, काम दो, अच्छा चिंतन दो, अच्छे अच्छे विचार दो, खुशी के नशे के संकल्प इमर्ज करो। उड़ने के लिए बहुत डबल रिफाइंड पेट्रोल की जरूरत होती है, प्लेन उड़ाते हैं रॉकेट उड़ाते हैं बहुत डबल रिफाइंड, जरा भी उसमें कुछ भी प्रकार का मिक्सअप नहीं चाहिए। आपको भी उड़ के बाबा के पास जाना है, मन बुद्धि को ले जाना है, आत्मा तो यही रहेगी लेकिन मन बुद्धि से बाबा के पास जाना, तो उसको इतना नशा इतना खुशी इतने उमंग के संकल्प चाहिए जो पेट्रोल की तरह उसको उड़ा के ले जाए। तो इतना नशे के संकल्प, खुशी के संकल्प, भाग्य के संकल्प, मिलन के संकल्प, उन संकल्पों के साथ ऐसे बैठो, नींद ही तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, नींद क्यों आएगी। लेकिन वही स्थिति में तो शांत स्वरूप हूं तो क्या होगा, शांति के अंदर सो जाएंगे, अच्छे अच्छे खुशी और नशे के संकल्प करके मिलन मनाओ और बाबा से शक्ति लेकर के वायुमंडल में अपनी सकास फैलो। ओके, ओम शांति। चलो अभी हम 5-7 मिनट अच्छी अभ्यास हम देखेंगे ना, कोई भी नींद नहीं करना, बहुत अलर्ट हो करके अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो और ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों का अनुभव करो। ऐसे लगे डायरेक्ट मेरे ऊपर बाबा की वो किरणें शांति की, शक्तियों की, प्रेम की आ रही हैं और मैं आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में उन शक्तियों को ग्रहण करके सर्व शक्तियों से संपन्न बन रही हूँ।
ओम शांति। राजू भाई ने बहुत ही सरल भाषा में सहज विधि लेकिन गहरी अनुभूति कराने वाली बातें अनुभव के आधार से बताई है, जो आप सब जरूर चिंतन करेंगे और उस स्थिति में पहुंच करके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। ये स्थान जो तपस्या धाम है ऐसे कहेंगे, तपस्या भूमि है, इसमें आए हैं तो जरूर अनुभव करेंगे। तो राजू भाई ने जो क्लास कराया वो सार्थक हुआ ऐसे कहेंगे, सभी करेंगे। राजू भाई को खातरी देंगे एक हाथ ऊंचा करके, तो आपको भी खुशी होगी कि चलो हम नीचे से ऊपर आए विशेष खास क्लास कराने और सभी ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ करने का, योग करने का, तपस्या करने का संकल्प किया है। बहुत बहुत हम धन्यवाद अदा कर रहे हैं, एक हाथ की ताली से शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया।